ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کے تیل پر پابندی میں امریکہ کی شکست اور ناکامی. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، 31 دسمبر 2011 کو امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے تیل پر پابندی کا اعلان کیا تھا اور بل پر دستخط کیے تھے، اور اس کے بعد یورپی ملکوں نے بھی امریکہ کی تقلید و پیروی کرتے ہوئے اسی طرح کا اعلان کیا، اگرچہ انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق جولائی سے ہوگا. امریکہ اور یورپی ممالک اور مغرب یہ سمجھ جاتا کہ آخری حربے کے طور پر اپنے آخری تیر کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے تیل پر پابندی عائد کر کے شاید وہ ایران کے عوام اور ایران کے نظام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکیں گے. لیکن کیا کہا جائے کہ نہ صرف یہ کہ ان کا نشانہ خطا ہوا، بلکہ الٹا انہی کی پیشانی پر جا لگا یہ تیر، اور اب خود یورپ اور مغرب میں تیل اور توانائی کا بحران پیدا ہو چکا ہے. چنانچہ امریکہ جو اپنے تیل کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ، اپنے ذخائر کا بہت ہی حفاظت کے ساتھ استعمال کرتا تھا، اور برطانیہ، اب وہ مجبور ہوئے کہ اپنے تیل کے ذخائر کو استعمال کریں تاکہ ان کے تیل کی منڈیوں میں جو بحران پیدا ہوا اس پر کسی حد تک قابو پایا جائے. 1 جنوری سے لے کر آج کی تاریخ تک، 24 مارچ تک کی اگر ہم اطلاعات اور رپورٹیں دیکھیں تو تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈیوں میں 15% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. چنانچہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ 10 یورپی اور 1 ایشیائی ملک یعنی جاپان کو اس بائیکاٹ یا اس پابندی کے قانون سے مستثنی قرار دے رہے ہیں. کیا یہ برطانیہ اور دیگر یورپی ملکوں اور جاپان کی بھلائی میں ہے، ان کے حق میں ہے، ان کے مفادات کے تحفظ کی خاطر ہے، یا ذلت آمیز پسپائی ہے، یا پھر یہ دیکھ لیا ہے کہ ایران کا تیل اگر یورپ نہیں تو کہیں اور بھی جا سکتا ہے، اس کے خریدار بڑی تعداد میں موجود ہیں، یا اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس وجہ سے امریکہ نے یہ پسپائی اختیار کی ہے؟ اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ہم نے اس کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید علی شہباز صاحب کو، اور اس کے علاوہ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار جناب ثاقب اکبر صاحب، اور اسی طرح لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب علی جعفر زیدی صاحب. آغاز کرتے ہیں یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود جناب علی شہباز صاحب سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
علی شہباز صاحب، کیا کہیں گے یہ کے بعد دیگر ایران کے خلاف مسلسل حملے ہوتے رہے پابندیوں کی صورت میں، اور آخری تیر کے طور پر انہوں نے ان کے جو ترکش میں جتنے تیر تھے یہ تیل پر پابندی کا انہوں نے استعمال کیا، لیکن ایسا لگا کہ خود جو ہے وہ تیر انہی کو جاگ لگا، اور اب امریکہ نے مجبور ہو کر 10 یورپی ملکوں کو اور 1 ایشیا یعنی جاپان کو کہا ہے کہ یہ ایران سے تیل خرید سکتے ہیں. کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ امریکہ کا کوئی چارہ نہیں تھا. یہ امریکہ کی جو بالکل بے وقفانہ پالیسی ہے، اس کا آغاز جو ہے انقلاب ایران کے کامیابی کے بعد ہی شروع ہوا 1979 میں، جب انقلاب یہاں پہ کامیاب ہوا، یہاں پہ خود مختار ایک حکومت قائم ہوئی، اور امریکہ کی آربٹ سے چکر سے جو ہے ایران خارج ہوا، اور امریکہ کے جتنے بھی ایڈوائزر تھے یا جو انفلوئنس آ رہا تھا وہ یہاں پہ ختم ہوا. تو اگر آخر میں امریکہ میں اگر حقیقت بین پالیسی ہوتی امریکی حکام پہ تو جو ہے وہ تسلیم کر لیتے اور رابطے میں برقرار رکھتے، لیکن جو ہے انہوں نے بالکل اٹھا کام کیا، یہ سمجھے کہ اپنے زور کے بلبوتے پر ایران کو ڈرا دھمکا کر ایران کے پالیسیز بدلیں گے، یا تو یہ کام کریں گے کہ یہاں کی جو حکومت ہے، نظام ہے، اس کو جو ہے گرانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے پالیسیز سب تمام ناکام ہوئے. آپ دیکھیے بالکل 1979 ہی میں انہوں نے جو ہے پہلی مرتبہ ایران پہ سینکشنز عائد کیے. یہ سینکشنز کوئی نئی چیز نہیں ہے, آج سے تقریباً 32-33 سال سے ان کا سلسلہ جاری ہے. خیر ہوتے ہوتے سلسلہ جو ہے 1995 میں یعنی 1995 میں جبکہ صدر بل کلنٹن کا دور تھا اور کوناکو جیسی امریکہ کی جو بڑی کمپنی ایران سے معاہدہ کیا تھا $2 بلین کا, تو انہوں نے اپنے پیر میں کوہاڑی ماری. کلنٹن جو ہے جو قانون نکالا کہ ایران امریکن کمپنیز کو ایران کے آئل سیکٹر کا بوائکاٹ کرنا چاہیے اور یہ کانٹریکٹ جو باندھا گیا تھا امریکہ کی آئل کمپنی اور ایران کے درمیان اس کو کینسل کیا جائے, اور اس کا یہ انہوں نے سمجھے کہ اس سے جو ہوگا کہ ایران مجبور ہو جائے گا, ایران جو ہے التجا کرے گا, التماس کرے گا امریکہ سے, لیں گے برعکس ہوا اس کے. اس کے برخلاف امریکہ جو ہے اپنے پیر پہ کوہاڑی مارا, امریکہ کے جو آئل سیکٹر وغیرہ کے امپلائیز وغیرہ تھے ان پر اثر ہوا, وہاں پہ جو انفلیشن پہ اثر ہوا, وہاں کے جو ہے پرائسز پہ اثر ہوا, اور اس کے جو جائے گزین ہوئے جو ریپلیسمنٹ ہوا, جاپان ہے, یورپ ہے, دوسری جگہوں کے آئل کمپنیز آئے آ کے وہاں پہ جائے گزینی کی ہے, اور جو ایران کا کاروبار آگے بڑھتا گیا. پھر دو سال بعد 1997 میں یہ بل کلنٹن نے نیا قانون نکالا کہ باہر کے ممالک کے یورپین ہو یا جہاں کے بھی ہو, وہ کمپنیز جو $20 ملین کا ایران کے آئل سیکٹر میں اگر انویسٹمنٹ کیے تو ان پہ جو ہے امریکن جو آئل سیکٹر ہے ان کا بوائکاٹ کیا جائے گا, یعنی ان کو امریکہ سے کوئی تجارت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا. وہ سمجھے کہ شاید جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کاروبار آگے بڑھتے گئے, ترقی ہوتی رہی, اور جو ہے ایران جو ہے بالکل خود مختفی ہو گیا, ایران اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گیا, اور حتیٰ کہ یورپ کے جاپان کے آئل کمپنی ان سے قرارداد وغیرہ باندھے, اور جو ہے ان کا جو ہے پھر اس کا سلسلہ جاری ہوا جاری. یہاں تک کہ ابھی آپ نے جو اشارہ کیا صدر اوباما کا جو ہے بالکل ایک احمقانہ اقدام تھا ان کا, انہوں سمجھے کہ جو ہے ایران اب تو بالکل مجبوری ہو جائے گا, لیکن جو ہے اس کے برخلاف جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا خریدار موجود ہے دیت میں, بازار جو ہے گرم ہے, اور جو ہے ایران اگر جو ایران کا جو ہے کسی سیکٹر کے لیے یا کسی مثلاً ملک کے لیے کچھ اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ میں کچھ کمی بھی ہوئی تو آئل پرائز کا جو اضافہ ہوا, قیمتوں میں تیل کے جو اضافہ ہوا, اس سے جو ایران کا فائدہ ہوا, یعنی کم صادرات پہ ایران جو ہے بڑھ کر جو ہے درآمد حاصل کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے ابھی کل ہی میرے خیال سے اٹلی کے ایان اے کمپنی کا بیان آیا کہ ان کا انویسٹمنٹ قدر اتنا ہے ایران میں کہ تقریباً ابھی $1 بلین ایران سے جو ہے ان کو آئل کے شکل میں ان کو لینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ $1 بلین کا ایران سے جو ہے تیل وہ خرید سکتے ہیں اٹالین آئل کمپنی. اگر وہ نہ خریدیں امریکہ کے دباؤ میں آ کے جو ہے اگر بوائیکاٹ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ نقصان ہوگا, وہاں کے اقتصاد پہ اثر ہوگا, وہاں کے مثلاً جاب سیکٹر پہ اثر ہوگا, وہاں کے جو ہے خاص طور پہ جو ہے کیا کہیں گے اکانومی پہ اثر ہوگا. اور رہا جو ہے اثر نہ صرف جو ہے اٹلی پہ, اب آپ دیکھیں امریکہ پہ اثر ہو رہا ہے. اب موجودہ جو پرائسز ہیں وہاں پہ گیسولین پیٹرولیم وغیرہ کے امریکہ میں تقریباً $3.95 ہر گیلن ہے وہاں کے حساب سے, اور یہ جو ہے اگر گزشتہ سالوں سے اگر آپ مقایسہ کیے تو کافی بڑھ چکا ہے. چنانچہ 4 سال پہلے جب آئل پرائسز تقریباً $150 بیرل تک پہنچ چکے تھے, جب جو ہے $4 پر گیلن ہو چکا تھا, اور اتنا برا اثر پڑا کہ وہاں پہ ریسیشن, وہاں پہ اسٹیگنیشن شروع ہو گیا, یہاں کے اقتصادی بحران امریکہ میں شروع ہوا, ان کے اقتصاد پہ اس پہ اثر اتنا پڑا. تو ابھی بھی جو بڑھتے ہوئے پرائسز ہے ان کی پیش بینی یہ کی گئی ہے کہ یہ ماہ اپریل یعنی آئندہ مہینہ اس میں جو ہے اضافہ ہوگا, اور $4.25 جو ہے پر گیلن امریکہ میں جو ہے تیل بکے گا, تو اس کا مطلب مزید تو اس کا مطلب یہ اچھا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ اور ایسی غیر معقولانہ حرکت امریکہ سے ہوئی تو جو ہو سکتا ہے کہ آئل کا پرائس امریکہ میں $6 تک چلے جائے, جس پہ جو ہے بہت ہی زبردست اثر ان کی اکانومی میں پڑے گا, اکانومی بڑھ جائے گی وہاں کی.
بہت شکریہ آپ کا. اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سرکردہ طرز نگار اور ممتاز دانشور جناب ثاقب اکبر صاحب. السلام علیکم جناب.
علیکم السلام ورحمۃ
جی. ثاقب اکبر صاحب کیا کہیں گے کہ ان کا نشانہ تو خطا کر گیا, چوک گیا, اور خود ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی پیروں پہ انہوں نے کلاڑی مار لی, یعنی امریکہ اور مغرب نے. اور جب علاقائی ملکوں کی طرف نظر دیکھتے ہیں تو جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ اہنا ربانی خان اور دیگر اعلیٰ حکام اور حتیٰ پاکستان کی قیادت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے اس پر ہر حال میں عمل ہو کر رہے گا, اور یہ پروجیکٹ جیسے بھی ہوگا ہر حال میں مکمل کیا جائے گا. تو جہاں یورپ میں اس بات کی لے کر مخالفت بڑھتی جا رہی, وہیں پاکستان, ہندوستان اور جنوبی کوریا اور چین اور جاپان جیسے ملکوں میں بھی, تو کیا بنے گا امریکہ کی اس پابندی کا؟
میرا خیال یہ ہے کہ بہت اچھا غالب کا ایک شعر جو ہے وہ امریکہ کی صورتحال پہ پورا اترتا ہے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا۔ ہاں معاف کیجئے، میرا خیال ہے کہ میر کا یہ شعر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یعنی بھونچکا کے اور بالکل ہوش و حواس کے بغیر اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لی ہوں، اور خود اپنے لیے ہی انہوں نے مصیبتیں جو ہیں وہ کھڑی کر لی ہوں۔ ماضی میں بھی امریکہ نے جو کچھ کیا اور اس کے اتحادیوں نے، اس کا نقصان جو ہے وہ ان کے اوپر ہوا، اور ایران نے داخلی طور پر جیسے اپنے تمام شعبوں میں ان پابندیوں کی وجہ سے ترقی کی ہے اور خود انحصاری حاصل کی ہے، وہ پوری دنیا میں بڑی حیران کن ہے۔ میرا خیال ہے باقی بھی تھرڈ ورلڈ کی قوموں کے لیے ایک بہت بڑا مثال ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی خوشبختی کا دن شروع ہوتا ہے جس قوم کے اوپر امریکہ جو ہے وہ اپنی پابندیاں جو ہے وہ عائد کرے، اس لیے کہ پھر قومیں اپنے قدموں پہ جو ہے وہ کھڑا ہونے کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی دفعہ اس طرح کے، یعنی پاکستان کے اوپر جن جن شعبوں میں پابندیاں لگی تو پاکستان نے بھی آگے ان شعبوں میں جو ہے وہ ترقی کی۔ اب جو تازہ جو صورتحال ہے اس خطے میں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یورپی یونین نے پابندیاں عائد کی تو سب سے پہلے جو ہے وہ انڈیا آگے بڑھا اور اس نے بہت بڑا جو ہے وہ معاہدہ کیا ایران کے ساتھ اپنے تیل کو جو ہے وہ ایکسپورٹ اپنا امپورٹ کرنے کے لیے ایران سے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ انہوں نے اپنا اسٹیٹ ایران کے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی پابندیاں تھیں، تو اس کا بھی فائدہ یہ ہوا کہ دونوں ملکوں نے 45% کہا کہ پہلے مرحلے پر ہی ہم ہر صورت میں لوکل کرنسی جو ہے وہ دیں گے، پھر اگر مزید پابندیاں عائد کی گئیں تو ابھی جو لیٹسٹ ایک بل انڈیا کی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر مزید پابندیاں عائد کی گئی تو 100% جو ہے وہ لوکل کرنسی میں جو ہے یہ تیل جو ہے وہ خریدا جائے گا۔ یہ اور بھی دونوں ملکوں کے لیے کے فائدے میں ہوا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اعلان کیا، بلکہ معاہدہ اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی، پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ جب ملاقاتیں ہوئیں تو یہ طے پایا یہاں پر کہ جناب آئندہ ہم بھی جو ہے وہ مقامی کرنسی میں جو ہے وہ کاروبار کریں گے۔ اس طرح سے یہ ہوا کہ ان کرنسیوں کو فائدہ ہوا، اور جن کرنسیوں کو جو ہے وہ پہلے جو اپنا جن میں کاروبار کیا جا رہا تھا ان کے لیے بڑے یہ نقصان اور خطرے کی علامت بن گئے اس طرح کے منصوبے۔ اس کے بعد آپ یہ صورتحال دیکھیں کہ وہ کمپنیاں جو کہ یہ کاروبار کر رہی تھیں، بلکہ ٹرکنگ کمپنیاں بھی وہ ساری، اور شپنگ کمپنیاں بھی، اور باقی جو انشورنس کمپنیاں بھی، وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ اور یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سرمایہ داری جو نظام ہے یہ عوام کی بنیاد پہ نہیں چل رہا ہوتا، یہ تو سرمایہ دارانہ انویسٹمنٹ کرنے والی کمپنیوں کے مفادات کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو ساری کمپنیوں نے اصل میں یہ شور مچایا ہے مغرب کے اندر اور اپنا امریکہ کے اندر، یورپی یونین کے اندر، کہ جناب یہ اگر آپ نے سلسلہ شروع کیا تو یہ تو نہیں چلے گا۔ کمپنیوں کا بہت زیادہ دباؤ آیا، جہاں پہ ان کی اکانومی کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑا، وہاں اس طرح جو کمپنیاں کاروبار کر رہی تھی وہ کب اپنے مفادات جو ہے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ سکتی۔ تو انڈیا کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ سب سے پہلے ہی 25% ایران کا تیل جو ہے وہ چائنا اس کا خریدار ہے، تو چائنا نے بھی ان پابندیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب دنیا کی ایشیا کی مارکیٹ کے بڑے پلیئرز نے، جس میں پاکستان تو نیا اس میں انوالو ہو رہا ہے اس سلسلے میں، اس سیکٹر میں آ رہا ہے ایران کے ساتھ، لیکن جو پہلے سے کاروبار کرنے والے ملک تھے انہوں نے سب سے پہلے اس کا انکار کر دیا، اور بہت زیادہ جاپان نے خاص طور پہ، اور جاپان کی کمپنیوں نے بھی، اور یورپ کی پھر کمپنیوں نے دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ جن ملکوں کو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا ہے سب سے بڑے بڑے ملک ہیں، یعنی یورپ کے، اٹلی اس میں موجود ہے، یونان اس میں موجود ہے، اسپین اس میں موجود ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اور خود برطانیہ ہے، یعنی سب کو انہوں نے گویا بڑی جتنی ان کی اکانومیز ہیں یورپ کی ان سب کو انہوں نے ایگزمپٹ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں پیچھے کیا، باقی تو تماشا ہی رہ گیا۔ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ جو بینکوں کے کاروبار، ایران کے ساتھ جو لین دین اور کمپنیوں کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس میں بھی بہت جلد ایک نیا جو ہے وہ اعلان ہونے والا ہے۔ 20 سے خود جو اپنا باراک اوباما نے جو پچھلے دنوں بیان دیا ہے، उन्होंने खुद ये तस्लीम किया है कि ईरान के ऊपर ये जो नई सैंक्शन हमने लगाई हैं इसके नतीजे में पर बैरल 20 से लेके $30 तक इजाफा हुआ है। वहां के माहरीन ने ये बात लिखी है, जैसा कि हमारे दोस्त शहबाज साहब ने भी कहा, खुद वहां के प्रोफेसर्स ने और इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये लिखी है कि ये क्या गजब हुआ कि यानी कहा कि 250 मिलियन बैरल डेली जो पैदावार थी ईरान की अगर वो कम होके 2 मिलियन पर आ गई है, अगर फर्ज किया कि 5 लाख जो है वो कम हो गई है तो दूसरी तरफ जो कीमत है वो इतनी बढ़ गई है कि उतने ही पैसे जो है तकरीबन ईरान को जो है ये 5 लाख जो है वो कम बेचकर जो है ईरान जो है वो पैसे कमा रहा है। और आगे जो हालात हैं उसका नतीजा ये निकलने वाला है कि ईरान की इनकम में इस फील्ड में इजाफा हो जाएगा और उनको जो है वो बहुत ज्यादा यूरोपीय इकॉनमी और अपना अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर इसके बहुत ज्यादा मुश्किल असरात आने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि उन्होंने बेल आउट करने के लिए स्पेन के जो इक्तसादी हालात थे उनको जो है वो यूरोपीय यूनियन ने उनको नया पैकेज दिया है। इसी तरह से इसके बाद
जी
यानी बाकी जो मुल्क हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरे दिन जो है वो इकोनॉमी पर आने वाले हैं। तो यूरोपीय यूनियन बहुत ज्यादा मुश्किलात में है, दाखिली तौर पर
अमरीका,
बल्कि यहां तक खुद बराक ओबामा ने इशारा किया है कि इस खित्ते में जो अमरीका को मुश्किलात हैं खलीज में उसमें वो फंसा हुआ है। ये अपना अफगानिस्तान में उनके यहां से 23,000 फौजी जो है वो निकालने की उनकी कमिटमेंट है, वहां पे मुश्किलात में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में वो मेरा ख्याल है कि आइंदा मजीद भी इंशाल्लाह आप भी शर्मसार हो और दूसरों को भी शर्मसार कर वाली पॉलिसी इख्तियार वो करते रहेंगे और मजीद जो है वो कुछ विड्रॉ करेंगे।
जी, बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन जहां पर मौजूद हैं बैन अलावी उमूर के माहिर जनाब अली जाफर जैदी साहब। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम,
शुक्रिया। जैदी साहब मैं आपसे सवाल ना पूछ के खुद वहां के अखबारात वहां के ज़रा इब्लाग और वहां के जो सहाफती हलके हैं उनका रद्द अमल आपकी ज़बानी जानना चाहूंगा कि क्या सूरत हाल है अब जब वहां तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और अब अमेरिका ने बरतानिया को भी मुस्तस्ना कर दिया, कहा है कि वो ईरान से तेल खरीद सकता है, तो वहां किस तरह के ख्यालात और किस तरह के रद्द अमल सामने आ रहे हैं?
ये रद्द अमल उसी तरह है जैसे कि किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होते हैं और यहाँ की अक्सरियत तो बहरहाल अमरीका का हशिया बरदार बनने के खिलाफ है। यानी आज बरतानिया, यहाँ हमारे दोस्त हैं टोनी बेन, उन्होंने अभी लास्ट वीक एक स्पीच में कहा कि जब वो पैदा हुए तो बरतानिया की कॉलोनी थी दुनिया भर में और बरतानिया एक साम्राज्य के तौर पर था और वो अब 80-85 साल के हैं। वो कहने लगे कितनी शर्म की बात है कि आज बरतानिया अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है। अच्छा, अब ये तेल के जो फैसले या दुनिया भर में जो भी फैसले सियासी होते रहे हैं और हो रहे हैं और आज आलमी साम्राज्य का सरगना अमरीका अपने इन तमाम हाशिया बरदारों को साथ लेकर अपने फैसले इम्पोज करता है, तो उसमें जो रूलिंग क्लासेस हैं, जो एक खास तबका है, वो तो उसमें शामिल होता है, लेकिन यहाँ के अवाम की अक्सरियत इन फैसलों के हमेशा खिलाफ रही है। और हत्ता कि आपको याद होगा कि इराक पर हमले से पहले लंदन की सड़कों पे, जिसमें हम भी शामिल थे, 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख लोग इस लंदन की सड़कों पर आए थे। तो अवाम का जो रिएक्शन है, जो अखबारात हैं उनमें भी, वो जो प्रोग्रेसिव अखबारात हैं जो बरतानवी नेशनलिज्म के हवाले से भी सोचते हैं और बरतानिया को एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखने पर मजबूर करते रहते हैं, उनके तासुरात और हैं। और जो रूलिंग क्लासेस हैं और उनके जो अखबारात हैं, टेलीग्राफ हुआ या इस तरह के 2-4 और, उनके तासुरात कुछ और हैं। मगर जो हकीकतें हैं वो सामने अगर आप और हम, जैसे अभी डिस्कशन में शहबाज साहब और पाकिस्तान से साकिब अकबर साहब पॉइंट्स रेज कर रहे थे, ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं। ये न्यू ईयर्स ईव पर बराक ओबामा ने ऐलान किया ईरान के बारे में, तेल के बारे में, और उसके बाद यूरोप में मुसलसल इस पे बहस व मुबहसा होता रहा यूरोपियन यूनियन के ममालिक में कि अमेरिका का जो हम पर दबाव है ईरान के तेल के बारे में, सैंक्शंस जो इम्पोज की जा रही हैं, हम उसको फॉलो करें या ना करें। तो इतना दबाव था, और ये दबाव आपने देखा इराक के बारे में भी था, अफगानिस्तान पर भी है और लीबिया पर भी था। तो बहरहाल उन्होंने 23 जनवरी को ये फैसला किया कि ईरान से तेल जो है अब ना खरीदा जाएगा, और जो यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसे की रकम की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नहीं करेंगे। अब उसके नतीजे में एक ऐसी दुनिया जहाँ पर चीन, इंडिया और जापान, ईरान का 50% तेल वहाँ जाता है, आज की दुनिया में जो तुर्की है उसमें 51% जो उसकी टोटल कंजम्पशन है वो 51% ईरान से आती है, इटली और स्पेन में 14% जो उनकी टोटल कंजम्पशन है वो ईरान से आती है, साउथ अफ्रीका की 25% कंजम्पशन जो है तेल की वो ईरान से आती है, उसके साथ साथ और ममालिक में आपका श्रीलंका का 100% जो कंजम्पशन है वो ईरान के तेल से आती है। तो जब दुनिया की पूरी तेल की सूरत हाल में ईरान का इतना अहम एक रोल है, तो अमेरिका और उसके अलाइज का ये ख्याल था कि शायद एक प्रेशर बिल्ट होगा, और जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए ट्रांजैक्शंस बंद होंगी तो ईरान पर जो उनका दबाव है वो बढ़ेगा और ईरान फिर शायद कंसीड कर जाए। हालांकि 1979 से जो सैंक्शंस जारी हैं, ईरान की क़यादत ने, ईरान के अवाम ने उसका बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है और एक ताकतवर कौम के तौर पर इमर्ज हुए हैं, और ये एक हकीकत है कि आज ईरान एक उस खत्ते में एक बड़ी ताकत है।
बहुत शुक्रिया।
ये फैसले तो इन्होंने कर लिए, लेकिन इन 2 महीनों में हुआ क्या?
इससे बाद में गुफ्तगू होगी।
जनवरी और फरवरी में जो कीमतें थी अमेरिका में, जैसे शहबाज साहब ने कहा 3 पॉइंट, जी
मैंने कहा इस पे 2 महीने में हुआ क्या, ये इंशाल्लाह अगले साल में मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। शहबाज साहब से अगला सवाल करना चाहूंगा, स्टूडियो में मौजूद रहिएगा। शहबाज साहब क्या कहेंगे, जो ये पसपाई अख्तियार की अमेरिका ने, ये उसकी अपनी मजबूरी थी या ईरान की साबित कदमी?
दोनों का जो है दखल है, वाकई जो है ईरान की साबित कदमी तो साबित हो चुकी है तमाम दुनिया के लिए, जैसे कि अपने हमारे जो है मुतखसिसीन ने जो है जाहिर किया है, तकरीबन 1979 से जब यहाँ पे इनकलाब जो है कामयाब हुआ, अमेरिका हर किस्म का हरबा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन जो ईरान की साबित कदमी थी जो ईरान को आगे लेके चली और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, और अमेरिका के लिए जो मजबूर है पसपाई, चुनाचे जो है इलेक्शन ईयर है, अगर वहाँ के अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन का असर पड़ा, अगर वहां पे जॉबलेसनेस ज्यादा होगी अमेरिका में, तो आया बराक ओबामा दोबारा जो है मुंतखब होंगे बनवान मदर सदर जमहूरी अमेरिका, मैंने समझता कि आवाम जो है उनको वोट डालेंगे अपना या मसलन किसी, तो लिहाजा उन्होंने तो जो है कांग्रेस के दबाव में आकर अमेरिका ईरान के खिलाफ कानून तो पास कर लिया, लेकिन वहां के बढ़ते हुए अखराज मजबूर कर दिए पसपाई के लिए। अब आप देखिए, कहा जाता है कि इस साल यानी अप्रैल से लेकर जो साल फिस्कल जो ईयर शुरू होने वाला है, अमेरिका को तकरीबन जो है $421 बिलियन इसके लिए तेल के लिए खर्च करना है, तेल के इंपोर्ट के लिए मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ जो है जराए से, और यूरोप को यूरोपियन यूनियन को जो है तकरीबन $500 बिलियन 502 बिलियन डॉलर का जो है तेल उनको जो है दरकार है। तो लिहाजा ये बढ़ते हुए दाम एक तरफ है, और फिर वहां की जो है हालात एक तरफ है, फिर खुद अमरीका के जखायर, अब आप देखिए अमरीका के जो जखायर थे पहले जो है आज से तकरीबन 40 साल पहले 39 मिलियन एस्टिमेटेड जो है रिजर्व थे उनके पास, लेकिन वो खर्च हो रहा होते गया, उसके अलावा जो है अब मौजूदा जो हालात है अमेरिका में 21 बिलियन जो है बैरल्स ऑफ रिजर्व है अमेरिका के पास। अब जो है उनको मजबूर होना पड़ा कि जो उनके स्ट्रैटेजिक रिजर्व आ रहा है उससे भी इस्तेमाल करें, वरना अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जैसा कि मैं इशारा किया वहां के अकतसाद पे असर पड़ेगा, वहां के जो है नेख पे, वहां के कीमतों पे, वहां के खुद आवाम पे, वहां के तो हत्या के जो है लोगों के पास जेब में जो है पैसे नहीं है शॉपिंग वगैरह के लिए। जो ज्यादातर जो हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह अमेरिका से जो उसूल हो रही हैं, हत्या के जो वेकेशन वगैरह जो उनको तातीलात मिल रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि कम से कम खर्च करें और जो है वहीं से नजदीक के इलाकों में घूम फिर के आ जाएं ताकि उनके जेब में गुंजाइश ही नहीं है तहमुल की। तो लिहाजा इस सूरत हाल में अगर जो है ऑयल प्राइसेस और बढ़ चुके तो उनके हशर क्या होगा उनका। तो इस लिहाजा अमेरिका को जो है पछता होना जरूरी था और वो कोई चारा है ही नहीं। अमेरिका जो है डरा धमका के समझा के अपने काम को आगे बढ़ाए लेकिन उसका बरखिलाफ अमेरिका के जो है पैर पे कुड़ाड़ी ही पड़ दी गई। अब आप देखिए खुद यहाँ का जो है सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है। ईरान के पास जो है जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है 151 बिलियन प्रोवन ऑयल रिजर्व है ईरान के पास में, बहुत बड़ा जखीरा है दुनिया में जो है। ईरान का जो है पोजीशन तकरीबन जो है 10% दुनिया के पूरे जो रिजर्व ईरान के पास है और प्रोड्यूसर्स में जो है ईरान का जो है दर्जा तीसरे नंबर पे है। अगर आप जो है सऊदी अरब का जो है पहले नंबर पे है, उसके बाद में जो है आपके वेनेजुएला है और इराक है, फिर ईरान का जो है तीसरे नंबर पे है। अच्छा फिर आपके ईरान के आप कुर्बजवार में या खलीज फास के इलाके में अगर देख लीजिए आप, वो सऊदी अरब के जो प्रोवन ऑयल रिजर्व है 264 बिलियन बैरल्स वगैरह है, खुद इराक के 143 वगैरह है, कुवैत में जो है तकरीबन 136 है, अमारात में 101 है, 101 बिलियन बैरल्स में कहने का मकसद है, कतर में 25 बिलियन है। लिहाजा सबको अगर जमा कर लें तो इस इलाके के जो ऑयल रिजर्व हैं वो तकरीबन जो है 800 बिलियन बैरल्स के जो है रिजर्व हैं इनके पास। अगर फर्ज कीजिए इस अहम इस हसास इलाके में अगर कोई अहमखाना कार्रवाई अगर अमेरिका की तरफ से हो गई और यहां का तेल अगर बंद हो गया तो अगर बंद होने की सूरत में जो है न सिर्फ ईरान का तेल बंद होगा बल्कि सऊदी अरब का तेल बंद होगा, कुवैत का तेल बंद होगा, इराक का तेल बंद होगा, कतर का तेल बंद होगा, अमारात का तेल बंद होगा। अगर ये तेल बंद हो जाए तो बताइए कि न सिर्फ अमरीका के बल्कि दुनिया के इकतसाद पर क्या असर पड़ेगा, नुकसान तो होगा उनको। रहा के जो है मसलन यूरोप को कितना नुकसान होगा, यूरोप को जरूरी है ये तेल दरामद करना, जापान को और दूसरे ममालिक वगैरह को। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उनको कोई और चारा नहीं था बजुस पछपाए के, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है फेस सेविंग मेजर्स। तो अपने सूरत को अपने आबरू को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि जो है ये 10 ममालिक को हम जो एग्जम्प्ट करते हैं, इनको जो हम मुस्तस्ना करते हैं, इनसे जो है हम जो तहदीदात वगैरह थे उठा लेते हैं ताकि ये ईरान का तेल खरीदते रहें और कुछ आ रहा था। और अमेरिका अगर ये समझता है, ये सोचता है कि अमेरिका का जो है सिक्का तमाम दुनिया पे छा चुका है तो दुनिया पे राज है और अमेरिका जो चाहे कर सकता है, तो अमेरिका की गलतफहमी के अलावा कुछ है ही नहीं। अमेरिका जो है ना तो जो है वर्ल्ड का पुलिसमैन है ना तो अमेरिका का अख्तियार दूसरे ममालिक पर है। तो लिहाजा अमेरिका को और कोई चारा नहीं था बजुस पछपाई के, वरना अगर जो है ईरान तो अपनी साबित कदमी दिखा दिया कि किस तरह ईरान जो है मुस्तैद है और जो है अपने अजायम के लिए अपने अजाम मफादा का तहफ्फुज़ करने के लिए ईरान जो है साबित कदम रहेगा।
इसमें तो शक नहीं के कायदे इंकलाब इस्लामी नबी ने फरमाया कि इस्लामी जमहूरी निजाम शेर की तरह अपने मफादात का मुहाफिज है।
बिल्कुल सही फरमाया
आप। साकिब अकबर साहब, मैं अगले सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि 10 यूरोपीय मुल्कों को उसने मुस्तस्ना करार दे दिया और एक जापान को, हैरत है कि उसने इंतहाई करीबी इत्तेहादी एशिया में यानी जनूबी कोरिया को उससे मुस्तस्ना नहीं किया और चीन और हिंदुस्तान को, इसकी क्या वजह आपके ख्याल में?
मेरा ख्याल ये है कि प्रेशर का इंतज़ार है उनको बाकी ममालिक की तरफ से भी, इतना प्रेशर इनकी तरफ से उनको आया है और प्रायोरिटीज़ बनती हैं वैसे आलमी सतह पे। आप ये देखें कि इस खित्ते में जापान वाकई अमेरिका की प्रायोरिटी है पॉलिटिकली स्ट्रेटजिकली। जितना पैसा ईरान अपना जापान ने दिया है खलीज की पहली जंग में आप देखें, खलीज की दूसरी जंग में देखें, इकॉनमी बड़ी है दुनिया में और उसका शेयर बड़ा है अमेरिका को सपोर्ट करने में, एक ये बड़ी अहम बात है। दूसरा ये है कि किसी वक्त भी अगर जापान स्प्लिट कर गया इस सारे पूरे आलमी सतह में पॉलिटिकल एक इत्तेहाद और स्ट्रेटजिकल इत्तेहाद से, तो मेरा ख्याल ये है कि तेज़ रफ्तारी से नुकसान हो जाएगा अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को। इस लिहाज से जापान की जो हैसियत है वो बाकी इन ममालिक की नस्बत ज़्यादा है। अच्छा दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने इब्तदा की है, अदरवाइज वो इंडिया को भी ज़्यादा लंबा अरसा जो है वो नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरकार उसको इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं और इंडिया के साथ पहले भी वो बहुत सारी नाज़बरदारियां कर चुका है। इंडिया की आखिरकार उसको उसको एग्जेम्प्ट करना है। मैं तो पहले भी आपसे अर्ज किया है कि अभी ये पहला कदम है, अभी और भी कई चीज़ों में अमेरिका को पीछे आना है। अमेरिका के जो फौजी नुक्ता नज़र से जो अमेरिका को पै दर पै शिकस्तें हो रही हैं, सियासी नुक्ता नज़र से अमेरिका को जो शिकस्तें हो रही हैं और नफसियाती दबाव कबूल नहीं किया। आप ये देखें कि इस खत्ते में सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान से तवक्को थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के दबाव में आए। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार अमेरिका पे था, पाकिस्तान के ऊपर यानी जो फौजी हवाले से पाकिस्तान के ऊपर दबाव रहा। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट अभी तक कम अज कम ऐलान नहीं किया पाकिस्तान ने कि वो विड्रा होता है अपनी इस हैसियत से, तो पाकिस्तान से तो ज़्यादा अमेरिका को तवक्को हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान जैसी कमज़ोर इकॉनमी वाला मुल्क, मैं वैसे तो पाकिस्तान के यानी ताकत के भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अमरीकी नुक्ता नज़र से और सरमायादाराना निज़ाम के नुक्ता नज़र से मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान से तो उसको बहुत ज़्यादा तवक्को थी। लेकिन पाकिस्तान भी जब खड़ा हो गया और पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया और फिर इसके बाद इन बड़े बड़े ममालिक ने इससे इनकार कर दिया, तो मेरा ख्याल यह है कि अमरीका के लिए दबाव उस लिहाज से भी बढ़ गया। अमरीका को मुआशी तौर पर बहुत बड़े दबाव का जो है वो सामना है। अब अमेरिका की यह हालत जो है वो ऐसे फर्द किसी है जिसकी चादर छोटी है, वो सर ढांपता है तो उसके पांव नंगे हो जाते हैं और वो पांव ढांपता है तो उसका सर नंगा
होना। बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर आज रहूंगा।
साथ में बात ये कि ये चादर साथ दिन ब दिन सुकड़ भी रही है अमेरिका के लिए।
मैं फिर आज रहूंगा आपकी खिदमत में। अली जाफर जैदी साहब, गुफ्तगू आपकी जारी थी, माफ कीजिएगा मैंने रोक दिया था अभी से। आप फरमा रहे थे कि गुज़िश्ता दो ढाई महीने में क्या हुआ, वो आप अपनी
नहीं, कोई बात नहीं
जी, वो गुफ्तगू आप अपनी मुकम्मल कर लें। और उसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि इन लोगों को तवक्को ये थी कि ये जो ईरान के तेल का जो बायकाट है उससे जो कमी होगी वो सऊदी अरब पूरी कर देगा, क्यों नहीं पूरी कर सका? पहले तो आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लें, फिर मेरे सवाल का जवाब इनायत फरमा।
जी मैं बस शहबाज साहब की गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा था कि जो पिछले दो महीने में वहाँ जो डॉल कीमत फी गैलन अमेरिका में जनवरी में 3.28 डॉलर थी, अब वो 3.98 डॉलर है, यानी ये जो 70 सेंट का इजाफा हुआ है इन दो महीने में, एक ऐसे मुल्क में जहाँ के गरीब आवाम की अक्सरियत 50 सेंट का बस का टिकट नहीं खरीद सकती, तो उस पर इतना बड़ा ये बोझ आया। और वहां पर जो बहस चल पड़ी वो कुछ इस तरफ थी कि ये ओबामा की, और ये रिपब्लिकन की जानिब से बहस आई कि ओबामा की जो पॉलिसीज हैं गलत पॉलिसीज हैं उसके नतीजे में ये महंगाई हुई है। हालांकि वो भी जानते हैं, ओबामा भी जानता है कि ये ईरान पर जो सैंक्शंस की थी इन दो महीने में इतना उस पर असर हुआ है कि इन्हीं दो महीनों के अंदर अंदर, यानी आज 23 मार्च को उन्हें ये दो महीने में विड्रॉ करना पड़ा है। ये मैं पॉइंट लाना चाह रहा था। दूसरा ये कि ये जो भारत और चीन इन सैंक्शंस में शामिल नहीं थे जिस वक्त ईरान पर ये सैंक्शंस तेल पर लागू की गई, तो चीन और भारत ने इब्तदा में ही इससे इनकार कर दिया था, वो इसका हिस्सेदार नहीं बने थे, आज भी वो इसके हिस्सेदार नहीं है। इसलिए वो जो आपका सवाल था कि सैंक्शंस उनसे क्यों नहीं उठाई गई, उन्होंने तो पहले से ही नहीं इस बात को तस्लीम किया था। तीसरा, अब मैं आपके सवाल की जानिब आऊंगा कि ये इस तमाम सूरत हाल में क्या, जरा रिपीट करेंगे अपना सवाल?
नहीं, उनको तो ये थी कि सऊदी अरब जो है वो इस कमी को पूरा कर देगा जो मंडी में कमी वाकई होगी, और सऊदी अरब ने भी कहा था कि हम अपने तेल की पैदावार बढ़ा देंगे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। सऊदी अरब से जो उनको तवक्कोआत वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हो सकी, क्यों ऐसा हुआ?
जी जी, हालांकि ये कमी बहुत ज़्यादा नहीं है, ईरान की जो टोटल एक्सपोर्ट है या प्रोडक्शन है पर डे वो 2.6 मिलियन बैरल है, जिसमें से पिछले ये तीन महीने में जो दो महीने में फर्क आया वो सिर्फ 3 लाख बैरल पर डे की एक्सपोर्ट में की कमी हुई है, जिसको ये तवक्को कर रहे थे कि सऊदी अरब पूरा करेगा, या इन्होंने एक नया अपने उस खत्ते में एक नया वॉच डॉग क्रिएट किया है जो कतर का सरबराह है, वो इनके एक और इन्होंने एक वहाँ पालतू एक आदमी सामने लाए हैं, तो ना उस तरफ से हुआ है। तीसरा इनका ख्याल था कि लीबिया पर जब ये सारा कुछ हासिल कर लेंगे तो लीबिया से तेल की कमी को पूरा कर सकेंगे। अब लीबिया तो वहाँ पर जो वहाँ के ठग हैं और बरतानिया, जर्मनी, इटली और अमेरिका के जो तेल के कार्टेल में मौजूद ठग हैं, वो तो उनके हत्ते तेल लग गया है। चुनाचे वो जरूरी नहीं कि वहाँ से लेकर इन्हीं मुल्कों को बेचें, कहीं भी बेच सकते हैं। चुनाचे वो जो कमी सऊदी अरब और लीबिया से तवक्को थी या कतर से, वो तो नहीं हो पाई और होगी भी नहीं, क्योंकि सऊदी अरब के ज़खायर की अपनी लिमिटेशंस हैं और सऊदी और कतर जो इस वक्त अमेरिका के इस कदर उनकी मफादात के मुहाफिज हैं उस रीजन में, उनको अपना मुस्तकबिल भी देखना है, क्योंकि उनकी सारी इकोनॉमी का दारोमदार ही तेल पर है और ये कमी जितनी भी बढ़ती जाएगी और ममालिक पूरा नहीं कर सकते, मां सिवाय इसके कि अमेरिका, बरतानिया और ये जो यूरोप के अपने ममालिक जहां पर थोड़ा बहुत तेल है, ये अपने जो रिजर्व्स हैं उनको बाहर लाएं। और ये कितनी दुख की बात है कि ये पूरे दुनिया में जो तेल की सियासत है उसमें अमेरिका ने लाखों इंसानों का जो खून है वो शामिल करके इस तेल को खून से भर दिया है। इराक में 30 लाख मासूम इंसान मारे गए, इसी तरह लीबिया में और जहां जहां ऑपरेशंस होते रहे हैं अब तक और रीसेंट पास्ट में, लाखों इंसानों का खून इस तेल में चला गया है। और इस तेल के जो खरीदार हैं वो अमरीकी अवाम नहीं है, वो बरतानिया, यूरोप के अवाम नहीं है। ये तेल उस खास तबके में जाता है और उस तबके के पास जो दौलत आती है इस तेल के तिजारत से, वो अवाम तक छन छन कर नीचे नहीं जाती। यानी ये जितना भी दुनिया भर से तेल की सियासत या तेल की लूट मार के हवाले से जो जंगें कर रहे हैं, इराक की जंग $3 ट्रिलियन कर्जा लेकर लड़ी गई, तो उसके तमाम जो असरात हैं वो तो वहाँ का गरीब आदमी बर्दाश्त करता है, जबकि जो तेल की आमदनी है और उसके फवायद हैं वो वहाँ का हुक्मरान तबका या वो जो कार्टेल हैं वो उसका उससे मुस्तफीद होती हैं। चुनाचे वहाँ की अक्सरियत भी गरीब है, उसको इस तेल का कोई फायदा नहीं पहुँचता। यूरोप के अवाम, आपने देखा है यूनान का जो हाल हुआ है, स्पेन का जो हाल हुआ है, और दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और इस कोलैप्स करने के नतीजे में इनके पास वो टूल्स नहीं है जिससे इसको रिपेयर कर सके। चुनाचे दे आर इन अ मैस, रियल मैस। और इनका ख्याल था कि ईरान पर प्रेशर डाल के तो शायद ये अपने वो अजायम हासिल कर सकें, उनको इसका अंदाजा ही नहीं था कि ये फायर बैक कर जाएगा। और ये टोटल जो इनकी तमाम पॉलिसीज हैं, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, मिडल ईस्ट, ये सारी फायर बैक कर रही हैं और अल्टीमेटली इनको अपने जो इलाका है उसमें ही आकर अपने लोगों को फेस करना पड़ेगा। और ये निज़ाम बिल आखिर अमेरिकन इम्पीरियलिज्म और कैपिटलिस्ट सोसाइटी और ये निज़ाम, ये अपने जवाल की तरफ है, बड़ी तेजी से जवाल पजीर है।
बहुत शुक्रिया आपका रजी साहब, नवाजिश आपने कीमती वक्त नियत किया, हम शुक्रगुजार हैं आपके। अली शमा साहब, आपने अभी गुफ्तगु में इशारा किया और जाहिर है कि ज़राए बलाग में भी ये खबरें आ रही हैं कि जो उनके जो स्ट्रेटेजिक जो जखायर हैं अब उससे उन्होंने इस्तेफादा करना शुरू कर दिया, और जो आदादोशुमार बताते हैं कि उनके पास खलीज फ़ार्स के इलाके में जो जखायर हैं उनके मुकाबले में अमरीका और यूरोप के पास तेल के जखायर बहुत ही कम है और आइंदा चंद बरसों में ही वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इस सूरत हाल में जब वो मजबूर हुए हैं अपने जखायर को इस्तेमाल करने में और चंद बरसों में वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उनका क्या बनेगा?
तो और कोई चारा नहीं है, वो ये समझते थे कि जो है डरा धमका के अपने पॉलिसीज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपने ज़खायर देखिए सऊदी अरब का तेल तो उनके हाथ में है बहुत ही सस्ती कीमत में, बल्कि डर्ट चीप प्राइस वारा पे जो है सऊदी अरब उनको फराहम करता है प्राइस, वरना तेल की जो बाजार में कीमत है उसकी हकीकी कीमत है ही नहीं है। अभी एक बैरल आप देख लीजिए जो मौजूदा रेट जो चल रहा है 127 डॉलर पर बैरल है, अगर आप इसको जो है इसका मुकाबला अमेरिका से अगर इम्पोर्ट की हुए कोको कोला या पेप्सी कोला वगैरह के जो है बैरल को उसी अंदाज के भर दें आप, क्या जो है 127 डॉलर का होगा, कहीं कहीं से ज्यादा कीमत होगी इसकी तो मेरे ख्याल से, अगर उसी अंदाजे का एक बैरल जो है आप पेप्सी कोला या कोको कोला से भर दें आप, तो उसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है अपने प्रोडक्ट्स तो बहुत ही जो है गिरा कीमत में जो है बेचता है, और यहाँ के तेल जो है वाकई उसकी असल असास है इंडस्ट्री का, वरना के बगैर तेल के वहां की जो इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, और उसको बिल्कुल एक बिल्कुल मामूली बिल्कुल खाक की कीमत पे जो है खरीद रहा है। और रहा जो सऊदी अरब पे चूंकि प्रेशर है, सऊदी अरब चाहता था कि जो है इसको निकाल के सप्लाई वगैरह करें इसको, और सऊदी अरब जो है ये भी आमदनी का इजहार किया था कि जो है कि ईरान का तेल बंद हो जाए तो जो है हम हमारा करेंगे, लेकिन दोनों की क्वालिटी में फर्क है, ईरान के तेल में और सऊदी अरबी तेल में फर्क है। और रहा जो रिफाइनरीज जो ईरान के तेल के जो है लिए मखसूस बनाए गए हैं, जी हाँ, जैसे हिंदुस्तान की रिफाइनरीज हैं और खुदा इटली की रिफाइनरी
है,
स्पेन की रिफाइनरीज है, ये कहेंगे कि हमारा सऊदी अरब का तेल हमारे लिए रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता अगर वहां से आ गया, उसका मतलब यह है कि कई रिफाइनरीज को जो हमको बंद कर देना चाहिए और ऐसे नए रिफाइनरीज बनाना चाहिए जो उसके मुताबिक हो, उस अंदाज को जो है उस क्वालिटी के तेल को या उस कैफियत का जो तेल है उसको जो है प्रोसेस कर रिफाइन कर सके। तो लिहाज के अलावा जो है सऊदी अरब ऐसी गलती भी नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी अरब जो ईरान के हमजवार है, इसी मंत्र ईरान कह चुका है कि जो है अगर हमारा तेल अगर कम हो जाए या यहां से जो है हमारे पाबंदी लग जाए, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो खुरवा जवार के जो ममालिक हैं, जो हमारे हमसाए हैं, वो अपने बढ़ा के बेचें, तो वरना यह खयानत होगी, ये जो है अखलाक है हमसाई के खिलाफ है। और मैंने समझता कि सऊदी अरब जो है इस कदम के नादानी की हरकत करेगा जिससे उसको खुद नुकसान हो, तो लिहाजा से अमरीका के और यूरोप के पास कोई और चारा नहीं है वजूद इसके कि अपने पास जो जखायर वगैरह है उसको निकालें, उसको जो है सर्व करें। अच्छा, वो जखायर के खर्च होने में सर्व होने में जो है दो, एक तो इक्तिसादी जो है असर है, दूसरे साइकोलॉजिकल असर है। अब आप बताइए वहां के जो जहनों पे आवाम के खावा यूरोप के आवाम हो या जो अमेरिका आवाम जो जहन पर जाता होगा कि अब तक जो है अपने कंट्रीज को वो लोग जो है बरतर समझते थे, वो समझते थे कि हमारे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है वो जो है दुनिया के इकतसाद पे दुनिया के पॉलिटिक्स पे छाए हुए हैं और हमारे हाथ में हर चीज है, तो उनको बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा उनका, यानी तकरीबन एक जलजला खेज जो है चीज होगी अमेरिका के उसमें, और उसको कोई और चारा ही नहीं है कि आवाम के जज्बात को रोकने के लिए या वहां के जो निर्ख है वहां के जो कीमतें हैं यहां के इन्फ्लेशन को वहां के जॉब्स कंट्रोल करने के लिए, या तो जो है अपने जखायर में से निकाल के इस्तेमाल करें या तो फिर जो है जैसा कि हमारी गुफ्तगु चल रही है बाजु ममालिक को मुस्तस्ना कर दें, एग्जम कर दें, ताकि वो जो ईरान से जो है खरीद फरोख अपनी जारी रखें ताकि उनको नुकसान ना हो। तो बहरहाल जो है अमेरिका जो है अपने अहमखाना पॉलिसी तरफ से ऐसे जो है दो राय पे है जिसको जो है इधर भी इसलिए उसके दिल खतरा है, उस तरह भी अगर हुआ तो इसलिए खतरा है, तो अमेरिका को जो है पछपाई के और कोई चारा ही नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारे पास कम बचा है, सिर्फ दो मिनट का वक्त है। साकिब अकबर साहब से आखिरी सवाल करूंगा। साकिब अकबर साहब, आदू शबाद सबब खैर गर खुदा का हाथ, अमरीका ने इस तरह की जो हरकतें की हैं उसके बाद से देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान ईरान, पाकिस्तान ईरान, चीन ईरान, हत्ता जनूबी कोरिया ईरान, जापान ईरान, ये सब क्या कहते हैं आपस में मिलकर अब तजारत और लेन देन की तरफ बढ़ रहे हैं, और रुझान अभी पिछले दिनों 80 रुकनी वफ्द हिंदुस्तान का यहाँ आया था और मुख्तलिफ शोबों में उसने तजारती ताउन के माहदों पर या याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, तो क्या नहीं समझते कि अब कम अज कम एशिया, जनूबी एशिया और ये एशियाई ममालिक इकतसादी एतबार से इलाकाई इक्तिसादी ब्लॉक की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं?
मेरा ख्याल ये है कि वैसे तो जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी खासतौर पर जनूबी एशिया में वो उस तरह से पहले नजर नहीं आ रही थी, और बहुत ज्यादा अदम एतमाद जो है वो इस खित्ते में जो है वो बाहम तौर पर पाया जाता था, लेकिन अमरीका ने और उसके साथियों ने अपने तर्ज अमल से हमें अपने तर्ज अमल पर नजरसानी की दावत दी है, बल्कि मैं समझता हूँ कंपेल कर दिया है, उसने हमें मजबूर कर दिया है कि हम आपस में जो एक दूसरे के साथ जो हमसाया ममालिक हैं हम अपने मामलात को जो है वो जो हमारे इख्तलाफात देरीना चले आ रहे हैं हम उसको अच्छे अंदाज से मेज के ऊपर बैठ के उसको हल करें, और ये जो बाहर से आके अपना हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाली कौमें हैं जो कि जब जी चाहे जो मर्जी फैसला हमारे बारे में करें उनको हम नजरअंदाज कर दें। दूसरा ये कि जो इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं, मिडिल ईस्ट में जो अपना अपराइजिंग हुई है और उसके बाद फिर जो अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर जो एक सियासी तब्दीली के लिए एक शऊर जो है वो पैदा हो गया है, उसने भी हमारे खित्ते के लोगों को अपनी तमाम तर स्ट्रेटजीज पर नजरसानी पर मजबूर कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर ये इस शर में जो पाबंदियां अमेरिका ने लगाई, इस शर में ये खैर का पहलू निकल आया कि इस खित्ते के लोग और ममालिक जो हैं वो बाहम मिलकर तजारत करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बेहतर तो बहुत शुक्रिया नाज़िर, से वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़िर आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और हकीकत यही है कि अदू शबद सबब खैर गर खुदा का हद, और यही कुछ हुआ कि अमरीका और मगरब ने पता नहीं क्या सोचा था अपने जहन में और सारी तदबीरें उल्टी हो गई बकौल साकिब अकबर साहब के। बहरहाल इसी तरीके से अगर हालात रहे तो इक्तसादी एतबार से इलाकाई इक्तसादी ब्लॉक बहुत ही जल्द मारज वजूद में आएंगे। प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।